हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य अपने स्टडी रूम में रखे उस बड़े से काउच पर आंखें बंद करके लेटा था। उसे देखकर ये पता नहीं चलता था कि वो सो रहा है या जाग रहा है। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। वो आंखें बंद किए हुए इधर उधर चारों तरफ हाथ घुमाकर अपना फोन ढूंढने लगा। जैसे ही उसे अपना फोन मिला, उसने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखकर कॉल रिसीव की और फोन कान से लगाकर बात करने लगा। ओके या दूसरी तरफ से कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन आदित्य उस कॉल पर बात करते वक्त इन्हीं शब्दों में जवाब देता रहा। मुश्किल से दो मिनट उस कॉल पर बात करने के बाद आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर फोन वापस साइड में रख दिया और अपनी आंखें मलते हुए काउच पर उठ बैठा। फ्लैशबैक। पिछली रात लगभग 3 बजे आदित्य रवि के साथ ऑफिस से घर वापस आया था। रवि उसे ड्रॉप करके अपने घर के लिए चला गया था। आदित्य घर के अंदर आया और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे आज सुबह की सारी बातें याद आने लगीं कि किस तरह वो और सुनैना दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब थे कि अगर सुनैना ने शायद आदित्य को उस वक्त रोका नहीं होता तो शायद उन दोनों के बीच। ये सब मन में सोचते हुए आदित्य सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर रुककर अंदर झांक कर देखा। उसे सोफे पर बैठी हुई सुनैना नजर आई। उसे देखकर आदित्य समझ गया कि वो शायद उसका ही इंतजार करते करते इस तरह यहाँ सोफे पर ही सो गई होगी। लेकिन सुनैना को इस तरह से सोता हुआ देखकर आदित्य को काफी सुकून मिला और वो मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करते हुए बोला, अच्छा हुआ सो गई, नहीं तो और पता नहीं कितने सवाल करती। और फिर सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तो वैसे भी इसके सामने नहीं पड़ना। और फिर कमरे के अंदर आकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। तभी सुनैना सोई हुई सी थोड़ा बहुत हिली तो आदित्य अपनी जगह पर रुक गया और सुनैना की तरफ देखते हुए उसकी तरफ ही बढ़ने लगा। सुनैना इस वक्त सोते हुए भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य का उसके एकदम करीब जाने का मन कर रहा था। सुनैना के सारे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो अपनी दोनों बाहों को अपने हाथों से पकड़कर सोफे का टेक लगाकर बैठी हुई सी सो रही थी। आदित्य उसके एकदम करीब पहुंचा और अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को किनारे करने लगा, जिससे कि सुनैना का खूबसूरत चेहरा आदित्य को पूरा नजर आने लगा। और सुनैना के चेहरे को देखकर आदित्य जैसे फिर से सब कुछ भूल गया और थोड़ा सा आगे बढ़कर सुनैना के माथे पर किस कर लिया। वो मुस्कुराते हुए कुछ पल उसकी तरफ ही देखने लगा, लेकिन फिर जैसे उसे अचानक से कुछ याद आया और जल्दी से अपनी जगह से दो कदम पीछे हो गया। वो कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम में आकर उसने अपने स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और पागलों की तरह शराब की बोतल ढूंढने लगा। जैसे ही उसे शराब की बोतल मिली, वो ज़मीन पर ही बैठकर शराब पीने लगा। फ्लैशबैक एंड। उस कॉल पर बात करने के बाद आदित्य अपनी स्टडी रूम से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ा और इस तरह से कमरे के अंदर पहुंचा जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि सुनैना घर पर नहीं है और उस कमरे में भी इस वक्त कोई नहीं है। वो कमरे के अंदर आकर सीधा अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में फ्रेश और रेडी होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद आदित्य ऑफिस जाने के लिए पूरा रेडी होकर कमरे से बाहर निकला और नीचे आते हुए गीता को आवाज़ लगाई, गीता दी, गीता दी। आदित्य सीढ़ियां उतरते हुए तेज आवाज में गीता को बुलाया, हाँ भैया, क्या हुआ और आप घर वापस कब आए? गीता ने आदित्य को सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर थोड़ी हैरत से सवाल किया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आदित्य घर में ही है। ये बताइए, वो कहाँ है और वो कब गई घर से बाहर? आदित्य ने बिना सुनैना का नाम लेते हुए इनडायरेक्टली ही गीता से पूछा। गीता भी समझ तो गई थी कि आदित्य सुनैना के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर मुस्कुराते हुए थोड़ा नाटक करते हुए बोली, कौन कहाँ है भैया, किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? अच्छा भाभी, वो तो सुबह सुबह ही कहीं चली गई थी, थोड़ी जल्दी में लग रही थी। आपको बताकर गई है या नहीं कि कहाँ जा रही है? आदित्य ने बिना गीता की बातों पर गौर किए ही एकदम संजीदा लहजे और गहरी आवाज में पूछा, नहीं, मुझे क्यों बताकर जाएगी भला, मैं तो बस यहाँ पर काम करती हूँ ना, मुझे लगा आपको तो बताया ही होगा उन्होंने, नहीं बताया क्या? आदित्य के सवाल पर गीता पूरी बात बताती हुई बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कहाँ गई होगी वो। आदित्य ने गीता की बात पर कहा और अपनी आंखों पर डार्क ब्राउन सनग्लासेस लगाते हुए तेज कदमों से मेन गेट से घर के बाहर चला गया और फिर अपनी कार लेकर वहाँ से कहीं चला गया। क्या है ये भैया भाभी का भी, दोनों एक ही जैसे हैं बिल्कुल, चलो अच्छा है, जोड़ी सही रहेगी। आदित्य के बाद इस तरह अचानक चले जाने पर गीता ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा और फिर घर के काम और बाकी सफाई में लग गई। दूसरी तरफ, हे आई सॉ यू जस्ट नाउ ऑन स्क्रीन एंड यू जस्ट डिड फैबुलस एंड यू आर सो प्रिटी ऑल्सो। अभी अभी एक शॉट की शूटिंग कंप्लीट करके नैना अपनी चेयर पर बैठी हुई थी कि एक लगभग 30-32 साल का आदमी, जिसने कि नॉर्मल से थोड़े ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे और दिखने में भी काफी अच्छी पर्सनालिटी का था, वो नैना के बगल में रखी खाली चेयर पर बैठता हुआ बोला, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। नैना ने भी एक छूटी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए उस आदमी की तरफ देखकर कहा, नो नो थैंक्स, आप मुझे क्यों बोल रही हैं, ये तो आपका टैलेंट और पोटेंशियल है कि आज मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन एक दिन पूरी इंडस्ट्री आपकी तारीफ करेगी। वो आदमी अपनी बात को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नैना से बोला। नैना को पहले तो वो आदमी काफी अजीब सा लगा, लेकिन फिर नैना ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा तो वो उसे थोड़ा बड़ा और पावरफुल आदमी लगा, और फिर वो तो पहले से ही नैना से उसकी एक्टिंग स्किल से इम्प्रेस लग रहा था, तो नैना ने भी उससे बात करने में दिलचस्पी दिखाई। टू बी कंटिन्यूड।